पृष्ठ संख्या 281। तीन, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। गुप्त जी का जन्म पंजाब के रोहतक जिले के गुरियानी गांव में संवत 1922 में और मृत्यु संवत 1964 में हुई। वे अपने समय के सबसे अनुभवी और कुशल संपादक थे। पहले इन्होंने दो उर्दू पत्रों का संपादन किया था, पर शीघ्र ही कलकत्ते के प्रसिद्ध संवाद पत्र बंगवासी के संपादक हो गए। बंगवासी को छोड़ते ही ये भारत मित्र के प्रधान संपादक बनाए गए। ये बहुत ही चलते पुरजे और विनोदशील लेखक थे, अतः कभी कभी छेड़छाड़ भी कर बैठते थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती भाग 6 संख्या 11 के अपने प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख से अनस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया और इन्होंने आत्माराम के नाम से द्विवेदी जी के कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए लेखमाला निकाली, जिसमें चूहलबाजी का पुट पूरा था। द्विवेदी जी ऐसे गंभीर प्रकृति के व्यक्ति को भी युक्तिपूर्ण उत्तर के अतिरिक्त इनकी विनोदपूर्ण विगरहणा के लिए सर्गो नरक ठेकाना नहीं शीर्षक देकर बहुत पपता हुआ आल्हा कल्लू अलहित के नाम से लिखना पड़ा। पत्र संपादन काल में इन्होंने कई विषयों पर अच्छे निबंध भी लिखे, जिनका एक संग्रह गुप्त निबंधावली के नाम से छप चुका है। इनके रत्नावली नाटिका के सुंदर अनुवाद का उल्लेख हो चुका है। गुप्त जी ने सामयिक और राजनीतिक परिस्थिति को लेकर कई मनोरंजक प्रबंध लिखे हैं, जिनमें शिव शंभू का चिट्ठा बहुत प्रसिद्ध है। गुप्त जी की भाषा बहुत चलती, सजीव और विनोदपूर्ण होती थी। किसी प्रकार का विषय हो, गुप्त जी की लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ा देती थी। वे पहले उर्दू के एक अच्छे लेखक थे, इससे उनकी हिंदी बहुत चलती और फड़कती हुई होती थी। वे अपने विचारों को पृष्ठ संख्या 282 विनोदपूर्ण वर्णनों के भीतर ऐसा लपेट कर रखते थे कि उनका आभास बीच बीच में ही मिलता था। उनके विनोदपूर्ण वर्णनात्मक विधान के भीतर विचार और भाव लुके छिपे से रहते थे। यह उनकी लिखावट की एक बड़ी विशेषता थी। शिव शंभू का चिट्ठा से थोड़ा सा अंश नमूने के लिए दिया जाता है। इतने में देखा कि बादल उमड़ रहे हैं, चीले नीचे उतर रही हैं, तबीयत भुरभुरा उठी, इधर भंग उधर घटा, बहार में बहार। इतने में वायु का वेग बढ़ा, चीलें अदृश्य हुईं, अंधेरा छाया, बूंदे गिरने लगी, साथ ही तड़तड़ धड़धड़ होने लगी। देखा ओले गिर रहे हैं, ओले थमे, कुछ वर्षा हुई, बूटी तैयार हुई, बम भोला कहकर शर्मा जी ने एक लोटा भर चढ़ाई। ठीक उसी समय लाल डिग्गी पर बड़े लाठ मिंटो ने बंग देश के भूतपूर्व छोटे लाठ उडरबर्न की मूर्ति खोली। ठीक एक ही समय कलकत्ते में यह दो आवश्यक काम हुए। भेद इतना ही था कि शिव शंभू शर्मा के बरामदे की छत पर बूंदे गिरती और लॉर्ड मिंटो के सिर या छाते पर। भंग छान कर महाराज जी ने खटिया पर लंबी तानी और कुछ काल सुषुप्ति के आनंद में निमग्न रहे। हाथ पाव सुख में, पर विचार के घोड़ों को विश्राम न था। वह ओलों की चोट से बाजुओं को बचाता हुआ परिंदों की तरह इधर उधर उड़ रहा था। गुलाबी नशों में विचारों का तार बंधा कि बड़े लाठ फुर्ती से अपनी कोठरी में घुस गए होंगे और दूसरे अमीर भी अपने अपने घरों में चले गए होंगे, पर वह चील कहाँ गई होगी। हाँ, शिव शंभू को इन पक्षियों की चिंता है, पर वह यह नहीं जानता कि इन अभ्रस्पर्शी अट्टालिकाओं से परिपूरित महानगर में सहस्त्रों अभागे रात बिताने को झोपड़ी भी नहीं रखते। चार, पंडित गोविंद नारायण मिश्र। यद्यपि ये हिंदी के बहुत पुराने लेखकों में थे, पर उस पुराने समय में वे अपने फुफेरे भाई पंडित सदानंद मिश्र के सार सुधा निधि पत्र में कुछ सामयिक और साहित्यिक लेख ही लिखा करते थे, जो पुस्तकाकार छपकर स्थायी साहित्य में परिणत न हो सके। अपनी गद्य शैली का निर्दिष्ट रूप द्वितीय उत्थान के भीतर ही उन्होंने पूर्णतया प्रकाशित किया। इनकी लेख शैली का पता इनके सम्मेलन के भाषण और कवि और चित्रकार नामक लेख से लगता है। गद्य के संबंध में इनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य की सी थी। लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे, पर यह प्रसिद्ध बात है कि संस्कृत साहित्य में गद्य का वैसा विकास नहीं हुआ। बाण और दंडी का गद्य काव्य अलंकार की छटा दिखाने वाला गद्य था, विचारों को उत्तेजना देने वाला, भाषा की शक्ति का प्रसार करने वाला गद्य नहीं। विचार पद्धति को उन्नत करने वाले गद्य का अच्छा और उपयोगी विकास यूरोपीय भाषाओं में ही हुआ। गद्य काव्य की पुरानी रूढ़ी के अनुसरण से शक्तिशाली गद्य का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। जहाँ वे कुछ विचार उपस्थित करते हैं वहाँ भी पदच छटा ही ऊपर दिखाई पड़ती है। शब्दावली दोनों प्रकार की रहती है, संस्कृत की भी और ब्रजभाषा काव्य की भी। एक ओर प्रगल्भ प्रतिभा स्रोत से समुत्पन्न शब्द कल्पना कलित अभिनव भाव माधुरी है, तो दूसरी ओर तमतोम सटकाती मुस्काती पूरन चंद की सकल मन भाई छिटकी जुन्हाई है। यद्यपि यह गद्य एक क्रीड़ा कौतुक मात्र है, पर इसकी भी थोड़ी सी झलक देख लेनी चाहिए। साधारण गद्य का नमूना, परंतु मंदमति रसिकों के अयोग्य मलिन अथवा कुशाग्र बुद्धि चतुरों के स्वच्छ मलहीन मन को भी यथोचित शिक्षा से उपयुक्त बना लिए बिना उन पर कवि की परम रसीली उक्ति छबी छबीली का अलंकृत नक्षिक लौ स्वच्छ सर्वांग सुंदर अनुरूप यथार्थ सुस्पष्ट प्रतिबिंब कभी पड़ेगा। स्वच्छ दर्पण पर ही अनुरूप यथार्थ सुस्पष्ट प्रतिकृति प्रतिफलित होता है। उससे सामना होते ही अपने ही प्रतिबिंब प्रतिकृति मानव समता की स्पर्धा में आ उसी समय सामना करने आमने सामने आ खड़ी होती है। पृष्ठ संख्या 283। काव्यमय गद्य का नमूना, शरद पूनों के समुदित पूरन चंद की छिटकी जुन्हाई सकल मन भाई के भी मुंह मसीमल पूजनीय अलौकिक पद नख चंद्रिका की चमक के आगे तेजहीन मलिन और कलंकित कर दर्शाती लजाती सरस सुधा धौली अलौकिक सुप्रभा फैलाती अशेष मोह जड़ता प्रगाढ़ तमतोम सटकाती मुस्काती निज भक्त जन मन वांछित वराभय भुक्ति सुचारु चारों मुक्त हाथों से मुक्ति लुटाती मुक्ताहारी नीर शीर विचार सुचतुर कवि कोविद राज महीय सिंहासन निवासिनी मंदहासिनी त्रिलोक प्रकाशिनी सरस्वती माता के अति दुलारे प्राणों से प्यारे पुत्रों की अनुपम अनोखी अतुल बल वाली परम प्रभावशाली सुजन मन मोहिनी नवरस भरी सरस सुखद विचित्र वचन रचना का नाम ही साहित्य है। भारतेंदु के सहयोगी लेखक प्रायः उचित उत्पन्न उच्चरित नव आदि से ही संतोष करते थे, पर मिश्र जी ऐसे लेखकों ने बिना किसी जरूरत के उपसर्गों का पुछल्ला जोड़ जनता के इन जाने बुझे शब्दों को भी समुचित समुत्पन्न समुच्चरित अभिनव करके अजनबी बना दिया। मृदुता कुटिलता सुकरता समीपता ऋजुता आदि के स्थान पर मार्दव कौटिल्य सौकर्य सामीय आर्जव आदि ऐसे ही लोगों की प्रवृत्ति से लाए जाने लगे। 5. बाबू श्याम सुंदर दास जी, बाबू साहब। नागरी प्रचारणी सभा के स्थापन काल से लेकर बराबर हिंदी भाषा कवियों की खोज तथा इतिहास आदि के संबंध में लेख लिखते आए हैं। आप जैसे हिंदी के अच्छे लेखक हैं, वैसे ही बहुत अच्छे वक्ता भी। आपकी भाषा इस विशेषता के लिए बहुत दिनों से प्रसिद्ध है कि उसमें अरबी फारसी के विदेशी शब्द नहीं आते। आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा पढ़ी के ढंग पर हिंदी को ले चलने में आपकी लेखनी ने बहुत कुछ योग दिया है। बाबू साहब ने बड़ा भारी काम लेखकों के लिए सामग्री प्रस्तुत करने का किया है। हिंदी पुस्तकों की खोज के विधान द्वारा आपने साहित्य का इतिहास कवियों के चरित्र और उन पर प्रबंध आदि लिखने का मसाला इकट्ठा करके रख दिया। इसी प्रकार आधुनिक हिंदी के नए पुराने लेखकों के संक्षिप्त जीवन वृत्त हिंदी कोविद रत्नमाला के दो भागों में आपने संग्रहित किए हैं। शिक्षोपयोगी तीन पुस्तकें भाषा विज्ञान हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्यालोचन भी आपने लिखी या संकलित की है। 6. पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। हास्य विनोद पूर्ण लेख लिखने वालों में कलकत्ते के पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का नाम भी बराबर लिया जाता है, पर उनके अधिकांश लेख भाषण मात्र हैं, स्थायी विषयों पर लिखे हुए निबंध नहीं। 7. पंडित चंद्रधर गुलेरी। इनका जन्म जयपुर में एक विख्यात पंडित घराने में 25 आषाढ़ संवत 1940 में हुआ था। इनके पूर्वज कांगड़े के गुलेर नामक स्थान से जयपुर आए थे। पंडित चंद्रधर जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान और अंग्रेजी उच्च शिक्षा से संपन्न व्यक्ति थे। जीवन के अंतिम वर्षों के पहले ये बराबर अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्यापक रहे, पीछे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल होकर आए। पर हिंदी के दुर्भाग्य से थोड़े ही दिनों में संवत 1977 में इनका परलोकवास हो गया। ये जैसे धुरंधर पंडित थे, वैसे ही सरल और विनोदशील प्रकृति के थे। गुलेरी जी ने सरस्वती के कुछ ही महीने पीछे अपनी थोड़ी अवस्था में जयपुर से समालोचक नामक एक मासिक पत्र अपने संपादकत्व में निकलवाया था। उक्त पत्र द्वारा गुलेरी जी एक बहुत ही अनूठी लेख शैली लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे थे। ऐसा गंभीर और पांडित्यपूर्ण हास जैसा इनके लेखों में रहता था और कहीं देखने में न आया। अनेक गूढ़ शास्त्रीय विषयों तथा कथा प्रसंगों की ओर विनोदपूर्ण संकेत करती हुई उनकी वाणी चलती थी। इसी प्रसंग गर्भत्व एल्यूसिवनेस के कारण इनकी चुटकियों का आनंद अनेक विषयों की जानकारी रखने वाले पाठकों को ही विशेष मिलता था। इनके व्याकरण ऐसे रूखे विषय के लेख भी मजाक से खाली नहीं होते थे। यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थगर्भित वक्रता गुलेरी जी में पृष्ठ संख्या 284 मिलती है और किसी लेखक में नहीं। इनके स्मित हास की सामग्री ज्ञान के विविध क्षेत्रों से ली गई है, अतः इनके लेखों का पूरा आनंद उन्हीं को मिल सकता है जो बहुज्ञ या कम से कम बहुश्रुत हैं। इनके कछुआ धर्म और मारे सी मोही कुठाऊं नामक लेखों से उद्धरण दिए जाते हैं। एक, मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ गुरु की निंदा या असत कथा हो रही हो वहाँ पर भले आदमी को चाहिए कि कान बंद कर ले या और कहीं उठकर चला जाए। मनु महाराज ने न सुनने जो गुरु की कलंक कथा सुनने के पाप से बचने के दो ही उपाय बताए हैं, या तो कान ढककर बैठ ही जाओ या दुम दबाकर चल दो। तीसरा उपाय जो और देशों के 100 में 90 आदमियों को ऐसे अवसर पर सूझेगा वह मनु ने नहीं बताया कि जूता लेकर या मुक्का तानकर सामने खड़े हो जाओ और निंदा करने वाले का जबड़ा तोड़ दो या मुंह पिचका दो कि ऐसी हरकत न करे। पुराने से पुराने आर्यों की अपने भाई असुरों से अनबन हुई। असुर असुरिया में रहना चाहते थे, आर्य सप्त सिंधुओं को आर्यावर्त बनाना चाहते थे। ये आगे चल दिए, पीछे वे दबाते आए। विष्णु ने अग्नि यज्ञ पात्र और अरणी रखने के लिए 3 गाड़ियां बनाई। उसकी पत्नी ने उनके पहियों की चूल को घी से आंज दिया। उखल मूसल और सोम कुटने के पत्थरों तक को साथ लिए हुए कारवां मुंजवत हिंदू कुश के एक मित्र दर्रे खैबर में होकर सिंधु की एक घाटी में उतरा। पीछे से श्वान भ्राज अंभारी बंभारी हस्त सुहस्त कृष्ण शंड मर्क मारते चले आते थे। वज्र की मार से पिछली गाड़ी भी आधी टूट गई, पर 3 लंबे डग मारने वाले विष्णु ने पीछे फिरकर नहीं देखा और न जमकर मैदान लिया। पितृभूमि अपने भातृव्यों के पास छोड़ आए और यहाँ भातृव्यस्य बधाए सजाता नाम मध्यमेष्ठाय देवताओं की आहुति देने लगे। जहाँ जहाँ रास्ते में टिक वहाँ वहाँ यूप खड़े हो गए। यहाँ की सुजला सुफला शस्य श्यामला भूमि में ये बुलबुलें चहकने लगीं। पर ईरान के अंगूरों और गुलों का मुंजवत पहाड़ की सोमलता का चस्का पड़ा हुआ था। लेने जाते तो वे पुराने गंधर्व मारने दौड़ते। हाँ, उनमें से कोई कोई उस समय का चिलकौआ नकद नारायण लेकर बदले में सोमलता बेचने को राजी हो जाते थे। उस समय का सिक्का गौएं थी। जैसे आजकल लखपति करोड़पति कहलाते हैं वैसे तब शतगु सहस्त्रगु कहलाते थे। ये दमणी मल के पोते किरोड़ी चंद अपने नवग्वा दश गवा पितरों से शर्माते न थे, आदर से उन्हें याद करते थे। आजकल के मेवा बेचने वाले पेशावरियों की तरह कोई कोई सरहदी यहाँ पर भी सोम बेचने चले आते थे। कोई आर्य सीमा प्रांत पर जाकर भी ले आया करते थे। मोल ठहराने में बड़ी हुज्जत होती थी, जैसे कि तरकारियों का भाव करने में कुंजड़ेनों से हुआ करती है। ये कहते कि गौ की एक कला में सोम बेच दो, वह कहता वाह सोम राजा का दाम इससे कहीं बढ़कर है। इधर ये गौ के गुण बखानते, जैसे बुढ़े चौबे जी ने अपने कंधे पर चढ़ी बाल वधु के लिए कहा था कि याही में बेटा और याही में बेटी। वैसे ये भी कहते कि इस गौ से दूध होता है, मक्खन होता है, दही होता है, यह होता है, वह होता है, पर काबुली काहे को मानता। उसके पास सोम की मनोपली थी और इसका लिए बिना सरता नहीं। अंत में गौ का एक पाद अर्ध होते होते दाम तय हो जाता। भूरी आंखों वाली एक बरस की बछिया में सोम राजा खरीद लिए जाते, गाड़ी में रख कर शान से लाए जाते। अच्छा, अब उसी पंचनद में वाहिक आकर बसे। अश्व घोष की फड़कती उपमा के अनुसार धर्म भागा और दंड कमंडल लेकर ऋषि भी भागे। अब ब्रह्मावर्त ब्रह्मर्षि देश और आर्यावर्त की महिमा हो गई और वह पुराना देश न तत्र दिवसम वसेत पृष्ठ संख्या 285 बहुत वर्ष पीछे की बात है। समुद्र पार के देशों में और धर्म पक्के हो चले। लूटते मारते थे ही बेधर्म भी कर देते थे। बस समुद्र यात्रा बंद। कहाँ तो राम के बनाए सेतु का दर्शन करके ब्रह्म हत्या मिटती थी और कहाँ नाव में जाने वाले द्विज का प्रायश्चित कराकर भी संग्रह बंद। वही कछुआ धर्म, ढाल के अंदर बैठे रहो। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। संसार में त्रिविध दुख दिखाई पड़ने लगे, उन्हें मिटाने के लिए उपाय भी किए जाने लगे। दृष्ट उपाय हुए। उनसे संतोष न हुआ तो सुने सुनाए आनुश्रविक उपाय किए, उनसे भी मन न भरा। सांख्यों ने काठ कड़ी गिन गिन कर उपाय निकाला। बुद्ध ने योग में पककर उपाय खोजा। किसी न किसी तरह कोई उपाय मिलता गया। कछुओं ने सोचा, चोर को क्यों मारें, चोर की माँ को ही न मारें। न रहे बांस न बजे बांसुरी, लगी प्रार्थनाएं होने। माँ देही राम जननी जठरे निवासमम। और यह उस देश में जहाँ सूर्य का उदय होना इतना मनोहर था कि ऋषियों का यह कहते कहते तालु सूखता था कि 100 बरस से हम उगता देखें, 100 बरस सुने, 100 बरस बढ़ बढ़ कर बोले, 100 बरस अधीन होकर रहें। हयग्रीव या हिरण्याक्ष दोनों में से किसी एक दैत्य से देव बहुत तंग थे। सुरपुर में अफवाह पहुंची, बस इंद्र ने झटपट किवाड़ बंद कर दिए, आगल डाल दी, मानो अमरावती ने आंखें बंद कर ली। यह कछुआ धर्म का भाई शुतुरमुर्ग धर्म है। 2. हमारे यहाँ पूंजी शब्दों की है, जिससे हमें काम पड़ा। चाहे और बातों में हम ठगे गए, पर हमारे शब्दों की गांठ नहीं कतरी गई। यही नहीं, जो आया उससे हमने कुछ ले लिया। पहले हमें काम असुरों से पड़ा, असीरिया वालों से। इनके यहाँ असुर शब्द बड़ी शान का था। असुर माने प्राण वाला, जबरदस्त। हमारे इंद्र की भी यही उपाधि हुई, पीछे चाहे शब्द का अर्थ बुरा हो गया। पारस के पारसियों से काम पड़ा तो वे अपने सूबेदारों की उपाधि क्षत्रप, क्षेत्रवान या महाक्षत्रप हमारे यहाँ रख गए, और गुस्ताश्व, विस्ताश्व के वजन के कृशाश्व, शयावाश्व, वृहदश्व आदि ऋषियों और राजाओं के नाम दे गए। यूनानी यवनों से काम पड़ा तो वे यवन की स्त्री यवनी तो नहीं, पर यवन की लिपि यवनानी शब्द हमारे व्याकरण को भेंट कर गए। साथ ही मेष, वृष, मिथुन आदि भी यहाँ पहुँच गए। पुराने ग्रंथकार तो शुद्ध यूनानी नाम आर, तार, जितुम आदि ही शब्द में लाते थे। वराह मिहिर की स्त्री खना चाहे यवनी रही हो या न रही हो, उसने आदर से कहा है कि म्लेच्छ यवन भी ज्योतिष शास्त्र जानने से ऋषियों की तरह पूजे जाते हैं। अब चाहे वैल्यूएबल सिस्टम भी वेद में निकाला जाए, पर पुराने हिंदू कृतघ्न और गुरुमार न थे। यवन राजाओं की उपाधि सोटर वातार का रूप लेकर हमारे राजाओं के यहाँ आ लगी। शकों के हमले हुए तो शाक पार्थिव व्याकरणों के हाथ लगा, और शक संवत या शाका सर्वसाधारण के। हूण वंशु आंक्सस नदी के किनारे पर यहाँ से चढ़ आए तो कवियों को नारंगी की उपमा मिली कि ताजे मुड़े हुए हूण की ठुड्डी किसी नारंगी। बकौल शेक्सपियर के, जो मेरा धन छीनता है वह कूड़ा चुराता है, पर जो मेरा नाम चुराता है वह सितम ढाता है। आर्य समाज में मर्मस्थल पर वह मार की है कि जो कुछ कहा नहीं जाता। हमारी ऐसी चोटी पकड़ी है कि सिर नीचा कर दिया है। गैरों ने तो गांठ का कुछ न लिया, पर इन्होंने तो अच्छे अच्छे शब्द छीन लिए। पृष्ठ संख्या 286। इसी से कहते हैं कि मारे सी मोही कुठाऊं। अच्छे पद तो यो सफाई से ले लिए गए हैं कि इस पुरानी जमी हुई दुकान का दिवाला निकल गया। हम अपने आप को आर्य नहीं कहते, हिंदू कहते हैं। और तो क्या, नमस्ते का वैदिक फिक्रा हाथ से गया। चाहे जय राम जी कह लो, चाहे जय श्री कृष्ण, नमस्ते मत कह बैठना। ओंकार बड़ा मांगलिक शब्द है। कहते हैं कि पहले यह ब्रह्मा का कंठ फाड़ कर निकला था। इसी द्वितीय उत्थान के भीतर हम दो ऐसे निबंध लेखकों का नाम लेते हैं जिन्होंने लिखा तो कम है, पर जिनके लेखों में भाषा की एक नई गतिविधि तथा आधुनिक जगत की विचारधारा में उद्दीप्त नूतन भावभंगी के दर्शन होते हैं। 1. अध्यापक पूर्ण सिंह। सरस्वती की पुराने पाठकों में से बहुतों को अध्यापक पूर्ण सिंह के लेखों का स्मरण होगा। उनके 3-4 निबंध ही उक्त पत्रिका में निकले। उनमें विचारों और भावों को एक अनूठे ढंग से मिश्रित करने वाली एक नई शैली मिलती है। उनकी लाक्षणिकता हिंदी गद्य साहित्य में एक नई चीज थी। भाषा की बहुत कुछ उड़ान, उसकी बहुत कुछ शक्ति लाक्षणिकता में देखी जाती है। भाषा और भाव की एक नई विभूति उन्होंने सामने रखी। यूरोप के जीवन क्षेत्र की अशांति से उत्पन्न आध्यात्मिकता की, किसानों और मजदूरों की महत्व भावना की जो लहरें उठी, उनमें वे बहुत दूर तक बहे। उनके निबंध भावात्मक कोटि में ही आएंगे, यद्यपि उनकी तह में क्षीण विचारधारा स्पष्ट लक्षित होती है। इस समय उनके 3 निबंध हमारे सामने हैं, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, और सच्ची वीरता। यहाँ हम उनके निबंधों से कुछ अंश उद्धृत करते हैं। आचरण की सभ्यता। पश्चिमी ज्ञान से मनुष्य मात्र को लाभ हुआ है। ज्ञान का वह सहरा, बाहरी सभ्यता की अंतर्वर्तिनी, आध्यात्मिक सभ्यता का वह मुकुट जो आज मनुष्य जाति ने पहन रखा है, यूरोप को कदापि प्राप्त न होता, यदि धन और तेज को एकत्र करने के लिए यूरोप निवासी इतने कमीने न बनते। यदि सारे पूर्वी जगत ने इस महत्ता के लिए अपनी शक्ति से अधिक चंदा देकर सहायता की, तो बिगड़ क्या गया। एक तरफ जहाँ यूरोप के जीवन का एक अंश अभ्यस्त प्रतीत होता है, कमीना और कायरता से भरा मालूम होता है, वहीं दूसरी ओर यूरोप के जीवन का वह भाग जहाँ विद्या और ज्ञान का सूर्य चमक रहा है, इतना महान है कि थोड़े ही समय में पहले अंश को मनुष्य अवश्य ही भूल जाएंगे। आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है। इसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक, न आध्यात्मिक। जब पैगंबर मोहम्मद ने ब्राह्मणों को चीरा और उनके मौन आचरण को नंगा किया, तब सारे मुसलमानों को आश्चर्य हुआ कि काफिर में मोमिन किस प्रकार गुप्त था। जब शिव ने अपने हाथ से ईसा के शब्दों को परे फेंक कर उसकी आत्मा के नंगे दर्शन कराए, तो हिंदू चकित हो गए कि वह नग्न करने अथवा नग्न होने वाला उनका कौन सा शिव था। मजदूरी और प्रेम। जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी न करेंगे, तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती रहेगी। उनका चिंतन बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी हो गया है। 2. बाबू गुलाब राय। इस कोटि के दूसरे लेखक हैं बाबू गुलाब राय, MA LLB। उन्होंने विचारात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार के निबंध थोड़े बहुत लिखे हैं, जैसे कर्तव्य संबंधी रोग, निदान और चिकित्सा, समाज और कर्तव्य पालन, फिर निराशा क्यों, 1, पृष्ठ संख्या 287। छोटी सी पुस्तक है जिसमें कई विषयों पर बहुत छोटे छोटे अभ्यासपूर्ण निबंध हैं। इन्हीं में से एक कुरूपता भी है जिसका थोड़ा सा अंश नीचे दिया जाता है। सौंदर्य की उपासना करना उचित है, सही, पर क्या उसी के साथ साथ कुरूपता घृणास्पद और निंद्य है? नहीं, सौंदर्य का अस्तित्व ही कुरूपता के ऊपर निर्भर है। सुंदर पदार्थ अपनी सुंदरता पर चाहे कितना मान करे, किंतु असुंदर पदार्थों की उपस्थिति में ही वह सुंदर कहलाता है। अंधों में काना ही श्रेष्ठ समझा जाता है। सत्ता सागर में दोनों की स्थिति है, दोनों ही एक तारतम्य में बंधे हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे में परिणत होते हैं, फिर कुरूपता घृणा का विषय क्यों? रूपहीन वस्तु से तभी तक घृणा है जब तक हम अपनी आत्मा को संकुचित बनाए हुए बैठे हैं। सुंदर वस्तु को भी हम इसी कारण सुंदर कहते हैं कि उसमें हम अपने आदर्शों की झलक देखते हैं। आत्मा के सुविस्तृत और औदार्यपूर्ण हो जाने पर सुंदर और असुंदर दोनों ही समान प्रिय बन जाते हैं। कोई माता अपने पुत्र को कुरूपवान नहीं कहती। इसका यही कारण है कि वह अपने पुत्र में अपने आप को ही देखती है। जब हमारे संसार में अपने आप को ही देखेंगे, तब हमको कुरूपवान भी रूपवान दिखाई देगा। अब निबंध का प्रसंग यही समाप्त किया जाता है। खेद है कि समाज शैली पर ऐसे विचारात्मक निबंध लिखने वाले, जिनमें बहुत सी चुस्त भाषा के भीतर एक पूरी अर्थ परंपरा कसी हो, अधिक लेखक हमें न मिले। समालोचना का उद्देश्य हमारे यहाँ गुण दोष विवेचन ही समझा जाता रहा है। संस्कृत साहित्य में समालोचना का पुराना ढंग यह है कि जब कोई आचार्य या साहित्य मीमांसक कोई नया लक्षण ग्रंथ लिखता था, तब जिन काव्य रचनाओं को वह उत्कृष्ट समझता था, उन्हें रस, अलंकार आदि के उदाहरणों के रूप में उद्धृत करता था, और जिन्हें पुष्ट समझता था, उन्हें दोषों के उदाहरणों में दे देता था। फिर जिसे उसकी राय नापसंद होती थी, वह उन्हीं उदाहरणों में से अच्छे ठहराए हुए पद्यों में दोष दिखाता था और बुरे ठहराए हुए पद्यों के दोष का परिहार करता था। 1. साहित्य दर्पणकार ने श्रृंगार रस के उदाहरण में शून्यम वास गृहम विलोक्य यह श्लोक उद्धृत किया। रसगंगाधरकार ने इस श्लोक में अनेक दोष दिखलाए और उदाहरण में अपना बनाया श्लोक भिड़ाया। हिंदी कवियों में श्रीपति ने दोषों के उदाहरण में केशव दास के पद रखे हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा उद्देश्य समालोचना का होता है, अर्थात कवियों की अलग अलग विशेषताओं का दिग्दर्शन, उसकी पूर्ति किसी कवि की स्तुति में दो एक श्लोकबद्ध उक्तियां कहकर ही लोग संतोष मान लिया करते थे। जैसे निर्गतासुन वाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीति मधुर सांद्राशु मंजरी श्विव जायते, उपमा कालिदासस्य भारवेर्थ गौरवम नैषधे पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। किसी कवि या पुस्तक के गुण दोष या सूक्ष्म विशेषताएं दिखाने के लिए एक दूसरी पुस्तक तैयार करने की चाल हमारे यहाँ न थी। यूरोप में इसकी चाल खूब चली। वहाँ समालोचना काव्य सिद्धांत निरूपण से स्वतंत्र एक विषय ही हो गया। केवल गुण दोष दिखाने वाले लेखों या पुस्तकों की धूम तो थोड़े ही दिनों रहती थी, पर किसी कवि की विशेषताओं का दिग्दर्शन कराने वाली, उसकी विचारधारा में डूबकर उसकी अंतर्वृत्तियों की छानबीन करने वाली पुस्तक, जिसमें गुण दोष का कथन भी आ जाता था, स्थायी साहित्य में स्थान पाती थी। समालोचना के दो प्रधान मार्ग होते हैं, निर्णयात्मक जुडिशियल मेथड पृष्ठ संख्या 288 और व्याख्यात्मक इंडिक्टिव क्रिटिसिज्म। निर्णयात्मक आलोचना किसी रचना के गुण दोष निरूपित करके उसका मूल्य निर्धारित करती है। उसमें लेखक या कवि की ही प्रशंसा होती है, कहीं निंदा। व्याख्यात्मक आलोचना किसी ग्रंथ में आई हुई बातों की एक व्यवस्थित रूप में सामने रखकर उनका अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण करती है। यह मूल्य निर्धारित करने नहीं जाती। ऐसी आलोचना अपने शुद्ध रूप में काव्य वस्तु ही तक परिमित होती है, अर्थात उसी के अंग प्रत्यंग की विशेषताओं को ढूंढ निकालने और भावों की व्यवच्छेदात्मक व्याख्या करने में तत्पर रहती है। पर इस व्याख्यात्मक समालोचना के अंतर्गत बहुत सी बाहरी बातों का भी विचार होता है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, परिस्थिति आदि का प्रभाव। ऐसी समीक्षा को ऐतिहासिक समीक्षा, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। इसका उद्देश्य यह निर्दिष्ट करना होता है कि किसी रचना का उसी प्रकार की और रचनाओं से क्या संबंध है और उसका साहित्य की चली आती हुई परंपरा में क्या स्थान है। बाह्य पद्धति के अंतर्गत ही कवि के जीवन क्रम और स्वभाव आदि के अध्ययन द्वारा उसकी अंतर्वृत्तियों का सूक्ष्म अनुसंधान भी है, जिसे मनोवैज्ञानिक आलोचना, साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। इनके अतिरिक्त दर्शन, विज्ञान आदि की दृष्टि से समालोचना की और भी कई पद्धतियां हैं और हो सकती हैं। इस प्रकार समालोचना के स्वरूप का विकास यूरोप में हुआ। केवल निर्णयात्मक समालोचना की चाल बहुत कुछ उठ गई है। अपनी भली बुरी रुचि के अनुसार कवियों की श्रेणी बांधना, उन्हें नंबर देना अब एक बेहुदा बात समझी जाती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे हिंदी साहित्य में समालोचना पहले पहल केवल गुण दोष दर्शन के रूप में प्रकट हुई। लेखों के रूप में इसका सूत्रपात बाबू हरिश्चंद्र के समय में ही हुआ। लेख के रूप में पुस्तकों की विस्तृत समालोचना उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी ने अपनी आनंद कादम्बिनी में शुरू की। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की बड़ी विशद और कड़ी आलोचना, जिसमें दोषों का उद्घाटन बड़ी बारीकी से किया गया था, उक्त पत्रिका में निकाली थी। पर किसी ग्रंथकार के गुण अथवा दोष ही दिखलाने के लिए कोई पुस्तक भारतेंदु के समय में न निकली थी। इस प्रकार की पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी कालिदास की आलोचना थी, जो इस द्वितीय उत्थान के आरंभ में ही निकली। इसमें लाला सीताराम बीए का अनुवाद किए हुए नाटकों के भाषा तथा भाव संबंधी दोष बड़े विस्तार से दिखाए गए हैं। यह अनुवादों की समालोचना थी, अतः भाषा की त्रुटियों और मूल भाव के विपर्य आदि के आगे जा ही नहीं सकती थी। दूसरी बात है कि इसमें दोषों का ही उल्लेख हो सका, गुण नहीं ढूंढे गए। इसके उपरांत द्विवेदी जी ने कुछ संस्कृत कवियों को लेकर दूसरे ढंग की अर्थात विशेषता परिचायक समीक्षाएं भी निकाली। इस प्रकार की पुस्तकों में विक्रमांक देवचरित चर्चा और नैषत चरित चर्चा मुख्य है। इनमें कुछ तो पंडित मंडली में प्रचलित रूढ़ी के अनुसार चुने हुए श्लोकों की खूबियों पर साधुवाद है, जैसे क्या उत्तम उत्प्रेक्षा है, और कुछ भिन्न भिन्न विद्वानों के मतों का संग्रह। इस प्रकार की पुस्तकों से संस्कृत न जानने वाले हिंदी पाठकों को दो तरह की जानकारी हासिल होती है, संस्कृत के किसी कवि की कविता किस ढंग की है और वह पंडितों और विद्वानों के बीच कैसी समझी जाती है। द्विवेदी जी की तीसरी पुस्तक कालिदास की निरंकुशता में भाषा और व्याकरण के वे व्यतिक्रम इकट्ठे किए गए हैं, जिन्हें संस्कृत के विद्वान लोग कालिदास की कविता में बताया करते हैं। यह पुस्तक हिंदी वालों के क्या संस्कृत वालों के फायदे के लिए लिखी गई, यह ठीक ठीक नहीं समझ पड़ता। जो हो, इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य पृष्ठ संख्या 289 नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी, उन्होंने अपना सुधार किया। कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद तैयार करने के पहले मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ निकाला था, जिसमें सबसे बढ़कर नई बात यह थी कि देव हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्र बंधुओं ने बेशक जरूरी काम किया। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। रीतिकाल के भीतर यह सूचित किया जा चुका है कि हिंदी में साहित्य शास्त्र का वैसा निरूपण नहीं हुआ जैसा संस्कृत में हुआ है। हिंदी के रीति ग्रंथों के अभ्यास से लक्षणा, व्यंजना, रस आदि के वास्तविक स्वरूप की सम्यक धारणा नहीं हो सकती। कविता की समालोचना के लिए धारणा कितनी आवश्यक है, कहने की जरूरत नहीं। इसके अतिरिक्त उच्च कोटि की आधुनिक शैली की समालोचना के लिए विस्तृत अध्ययन, सूक्ष्म अन्वेषण बुद्धि और मर्मग्राहिणी प्रज्ञा अपेक्षित है। कारो कृत ही न माने, ऐसे ऐसे वाक्यों को लेकर यह राय जाहिर करना कि तुलसी कभी राम की निंदा नहीं करते, पर सूर ने दो चार स्थानों पर कृष्ण के कामों की निंदा भी की है, साहित्य मर्मज्ञों के निकट क्या समझा जाएगा। सूरदास प्रभु वह अति खोटे कारो की कृत ही न माने, ऐसे ऐसे वाक्यों पर साहित्यिक दृष्टि से जो थोड़ा भी ध्यान देगा वह जान लेगा कि कृष्ण न तो वास्तव में छोटे कहे गए हैं, न काले कलूट कृतघ्न। पहला वाक्य सखी की विनोद या परिहास की उक्ति है, सरासर गाली नहीं है। सखी का यह विनोद हर्ष का ही एक स्वरूप है, जो सखी का राधा कृष्ण के प्रति रति भाव व्यंजित करता है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य विरहाकुल गोपी का वचन है, जिससे कुछ विनोद मिश्रित अमर्ष व्यंजित होता है। यह अमर्ष यहाँ विप्रलम्ब श्रृंगार में रति भाव का ही व्यंजक है। इसी प्रकार कुछ दैन्य भाव की उक्तियों को लेकर तुलसीदास जी खुशामदी कहे गए हैं। देव को बिहारी से बड़ा सिद्ध करने के लिए बिहारी में बिना दोष के दोष ढूंढे गए हैं। संक्रोण को संक्रांति का संक्रमण तक ध्यान कैसे जा सकता था, अपभ्रंश समझ आप लोगों ने उसे बहुत बिगाड़ा हुआ शब्द माना है। रोज शब्द रुलाई के अर्थ में कबीर जैसी आदि पुराने कवियों में न जाने कितनी जगह आया है और आगरे आदि के आसपास अब तक बोला जाता है, पर वह भी रोजा समझा गया है। इसी प्रकार की बेसिर पैर की बातों से पुस्तक भरी है। कवियों की विशेषताओं के मार्मिक निरूपण की आशा में जो इसे खोलेगा वह निराश ही होगा। इसके उपरांत पंडित पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी पर एक अच्छी आलोचनात्मक पुस्तक निकाली। उसमें इस साहित्य परंपरा का बहुत अच्छा उद्घाटन है, जिसके अनुकरण पर बिहारी ने अपनी प्रसिद्ध सत्सई की रचना की। आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती के बहुत से पद्यों के साथ बिहारी के दोहों का पूरा पूरा मेल दिखाकर शर्मा जी ने बड़ी विद्वता के साथ एक चली आती हुई साहित्यिक परंपरा के बीच बिहारी को रख कर दिखाया। किसी चली आती हुई साहित्यिक परंपरा का उद्घाटन भी साहित्य समीक्षक का एक भारी कर्तव्य है। हिंदी के दूसरे कवियों के मिलते जुलते पद्यों की बिहारी की दोहों के साथ तुलना करके शर्मा जी ने तारतमिक आलोचना का शौक पैदा किया। इस पुस्तक में शर्मा जी ने उन आक्षेपों का भी बहुत कुछ परिहार किया जो देव को ऊंचा सिद्ध करने के लिए बिहारी पर किए गए थे। हो सकता है कि शर्मा जी ने भी बहुत से स्थलों पर बिहारी का पक्षपात किया हो, पर उन्होंने जो कुछ किया है वह एक अनूठे ढंग से किया है। उनके पक्षपात का भी साहित्यिक मूल्य है। यहाँ पर यह बात सूचित कर देना आवश्यक है कि शर्मा जी की यह समीक्षा भी रूढ़िगत कन्वेंशनल है। दूसरे श्रृंगारी कवियों से अलग करने वाली बिहारी की विशेषताओं के अन्वेषण और अंतः प्रवृत्तियों के उद्घाटन का जो आधुनिक समालोचना का प्रधान लक्ष्य समझा जाता है, प्रयत्न इसमें नहीं हुआ। यह खटकने वाली बात है, बिना जरूरत के जगह जगह चुहलबाजी और शाबाशी का महफिली तर्ज। पृष्ठ संख्या 290। शर्मा जी की पुस्तक से दो बातें हुई, एक तो देव बड़े की बिहारी या भद्दा झगड़ा सामने आया, दूसरे तुलनात्मक समालोचना के पीछे लोग बेतरह पड़े। देव और बिहारी के झगड़े को लेकर पहली पुस्तक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र बीए एलएलबी की मैदान में आई। इस पुस्तक में बड़ी शिष्टता सभ्यता और मार्मिकता के साथ दोनों बड़े कवियों के भिन्न भिन्न रचनाओं का मिलान किया गया है। इसमें जो बातें कही गई हैं वे बहुत कुछ साहित्यिक विवेचन के साथ कही गई हैं, नवरत्न की तरह यूं ही नहीं कही गई हैं। यह पुरानी परिपाटी की साहित्य समीक्षा के भीतर अच्छा स्थान पाने के योग्य है। मिश्र बंधुओं की अपेक्षा पंडित कृष्ण बिहारी जी साहित्यिक आलोचना के कहीं अधिक अधिकारी कहे जा सकते हैं। देव और बिहारी के उत्तर में लाला भगवान दीन जी ने बिहारी और देव नाम की पुस्तक निकाली, जिसमें उन्होंने मिश्र बंधुओं के भद्दे आक्षेपों का उचित शब्दों में जवाब देकर पंडित कृष्ण बिहारी जी की बातों का भी पूरा विचार किया। अच्छा हुआ कि छोटे बड़े के इस भद्दे झगड़े की ओर अधिक लोग आकर्षित नहीं हुए। अब तुलनात्मक समालोचना की बात लीजिए, उसकी ओर लोगों का कुछ आकर्षण देखते ही बहुतों ने तुलना को ही समालोचना का चरम लक्ष्य समझ लिया और पत्रिकाओं में तथा इधर उधर भी लगे भिन्न भिन्न कवियों के पद्यों को लेकर मिलान करने। यहाँ तक कि जिन दो पद्यों में वास्तव में कोई भाव साम्य नहीं, उनमें भी बादरायण संबंध स्थापित करके लोग इस तुलनात्मक समालोचना के मैदान में उतरने का शौक जाहिर करने लगे। इसका असर कुछ समालोचकों पर भी पड़ा। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र जी ने जो मतिराम ग्रंथावली निकाली, उसकी भूमिका का आवश्यकता से अधिक अंश उन्होंने इस तुलनात्मक आलोचना को ही अर्पित कर दिया और बातों के लिए बहुत कम जगह रखी। मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। द्वितीय उत्थान के भीतर समालोचना की यद्यपि बहुत कुछ उन्नति हुई, पर उसका स्वरूप प्रायः रूढ़िगत कन्वेंशनल ही रहा। कवियों की विशेषताओं का अन्वेषण और उनकी अंतः प्रकृति की छानबीन करने वाली उच्च कोटि की समालोचना का प्रारंभ तृतीय उत्थान में जाकर हुआ।